मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 2 जुलाई 2019 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 7 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 10 से 24 अक्टूबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं जय किशन गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, किशलय मिश्रा गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से, अम्बरीश तिवारी वाराणसी उत्तर प्रदेश से, अपर्णा वाजपेयी ग्वालियर मध्य प्रदेश से, एकता शर्मा अजमेर राजस्थान से, रोशनी कुमारी महुआ मुकुंदपुर बिहार से और घनश्याम प्रजापति आपका गांव है तखा जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश से। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं नशीले पदार्थों का व्यापार जो होता है और उससे हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा को किस तरह से चुनौती मिल रही है इस विषय पर बात करूंगा। लेकिन इससे पहले आइए हम कुछ दूसरी घटनाओं को दूसरे समाचारों को देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जो जल शक्ति अभियान है यह दूसरा जन आंदोलन बनने जा रहा है। सिविल सर्विस की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर आपको लगातार ध्यान रखना होगा। अब सवाल ये है दोस्तों कि ध्यान रखेंगे कैसे, क्योंकि अभी आप पाएंगे कि जो जल शक्ति है इस पर बहुत सारा मटेरियल आपको पढ़ने को मिलेगा। देखिए, कल का अगर आपने दूरदर्शन समाचार देखा हो तो उस पर वहां जल शक्ति मंत्रालय के बाकायदे सचिव आए थे, एक एक्सपर्ट भी आए थे और उनसे लंबी बातचीत की गई। अखबारों में आर्टिकल्स आने शुरू हो गए हैं। आज भी मैं आपको एक बहुत खूबसूरत आर्टिकल डॉक्टर भरत झुनझुनवाला जी का प्रोवाइड कर रहा हूं और इस तरह की खूब चीजें आपको मिलती चली जाएंगी। अगर आप संभल नहीं पाएंगे तो इसमें उलझ जाएंगे और उलझने का नतीजा क्या होगा कि एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपके पास इतना सारा बताने को है, इतना सारा बताने को रहेगा कि पता लगा कि जो बताया जाना चाहिए था वो छूट गया है और जो नहीं बताना जाना चाहिए था वो सामने आ गया है, और जबकि आपको उत्तर देने होंगे 150 से 250 शब्दों के बीच में ही। यह एक संकट होता है। इस संकट से बचने के लिए आप क्या करेंगे? इस संकट से बचने का एकमात्र उपाय हो सकता है कि आप केवल कुछ जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जिन्हें मैं बेसिक इंफॉर्मेशन कहूंगा, बेसिक एलिमेंट कहूंगा, बेसिक नॉलेज कहूंगा, उनको भर नोट कर लें। और देखिए, जब आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे, न्यूज सुनेंगे तो स्वाभाविक है कि चीजों के बारे में आपके दिमाग में संरचनाएं बनती चली जाएंगी, फैक्ट आपके पास रहेंगे, उन फैक्ट्स का आधार लेकर आप बड़े आराम से बड़े तार्किक रूप में अपने आंसर लिख सकेंगे। उदाहरण के तौर पर अगर आपने कल के रेडियो न्यूज कल की सुनी हो या दूरदर्शन समाचार ही देखा हो तो बहुत स्पष्ट तौर पर एक दो बातें कही गई हैं, ये आपको नोट कर लेनी चाहिए। पहला, उसमें यह कहा गया कि कल से यानी कि 1 जुलाई से यह अभियान शुरू कर दिया गया है, जल शक्ति अभियान। इसका नाम है जन शक्ति से जल शक्ति, यानी कि हम जन आंदोलन के माध्यम से अपने जल को की रक्षा करेंगे। ये 2 चरणों में होगा, चलिए उसकी हम डेट नहीं लेकर के चलते हैं। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात कही गई है वो ये है कि यह जो जल शक्ति अभियान है पहले उन जिलों और ब्लॉक्स में शुरू किया जाएगा जहां पानी का अभी जबरदस्त संकट है, और उसमें फिर डेटा बताए गए हैं कि ऐसे 256 डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई किए गए हैं और 1592 ब्लॉक्स आइडेंटिफाई किए गए हैं। यहां जल शक्ति अभियान शुरू किया गया, आपको आंकड़े मिल गए और देखिए सरकारी आंकड़े हैं जो आपके उत्तर को मतलब इतना मजबूत बनाएंगे कि एग्जामिनर इस बात के लिए मजबूर हो जाएगा कि नहीं, इस स्टूडेंट ने बहुत अच्छी तैयारी की है और ये बहुत ही सतर्क स्टूडेंट है। फिर न्यूज में आपने यह भी सुना कि इस जल शक्ति अभियान के तहत बेसिकली 5 बिंदुओं को रखा गया है बकायदे, उसमें भी न्यूज में 5 बिंदु दिए गए थे। तो पहला तो यह है कि जल का संचयन करके उसका संरक्षण किया जाएगा। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो हमारे पास जल संरक्षण के अभी पारंपरिक तरीके हैं उनका पुनरुद्धार किया जाएगा, जैसे कि तालाब हैं, कुएं हैं जो सूख गए हैं, बावड़ियां हैं, झील हैं, इनका पुनरुद्धार किया जाएगा। फिर जल का रिचार्ज करने की कोशिश की जाएगी, यानी कि भूमि के अंदर पहुंचाने की कोशिश की जाएगी ताकि हमारा जो भूमिगत जल का स्तर है वो ऊपर उठ सके, और जो हम जल का उपयोग करते हैं उनको कैसे हम रिसाइकिल करके फिर से उपयोग करने लायक बना सके ये किया जाएगा। जो नदी है, कछार है, वहां जो गाद इकट्ठे हो गए हैं उसके कारण पानी नहीं जमा हो पा रहा है, तो वो गाद हटाए जाएंगे और वर्षा के पानी को हम रोक सकें इसके लिए ढांचागत निर्माण किया जाएगा, तालाब, कुएं, इस तरह की चीजें बनाई जाएंगी। तो ये पांच बिंदु हैं, ये पांच बिंदु आपको नोट कर लेने चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जो टॉपिक थोड़ा सा बहुत कॉमन हो जाता है, स्टूडेंट उसके बारे में थोड़ी सी लापरवाही बरतने लगते हैं, अरे क्वेश्चन आएगा तो हम तो लिख ही देंगे, और सच है कि आप लिख भी देंगे, लेकिन उस तरीके से आप नहीं लिख पाएंगे अगर आपकी तैयारी बहुत सतर्कतापूर्ण नहीं है, जिस तरीके से लिखा जाना चाहिए जो आपको नंबर दिला सके। मित्रों, तो इसके माध्यम से मैं आपको केवल वो तरीका बता रहा हूं कि कैसे आप सरल से सरल विषयों को एक बहुत ही एक आप कह लीजिए स्पेशल विषय के रूप में कन्वर्ट करके एग्जामिनर के हाथ से अधिक नंबर छीन सकते हैं। दूसरी जो खबर है दोस्तों, वो है कि जम्मू और कश्मीर को लेकर के अभी एक जो आरक्षण विधेयक पारित किया गया है उसमें दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखिए कि जो जम्मू कश्मीर की हमारी जो सीमा है उसके 10 किलोमीटर के अंदर जो गांव है, जो लोग रह रहे हैं, उनके लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 435 गांव हैं, इसके तहत 3 लाख लोग रहते हैं। इसकी चर्चा मैंने पहले भी की थी लेकिन कल संसद ने इससे संबंधित बिल पारित किया है। इसके तहत इनको 3% का आरक्षण दिया जाएगा दोनों चीजों में, शिक्षण संस्थाओं में भी और सरकारी नौकरियों में भी। तो देखिए ये क्यों कहा गया, जब आप सिक्योरिटी वाले अपने टॉपिक को पढ़ेंगे, आंतरिक सुरक्षा, जिससे हर साल मेंस में आपको 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो स्वाभाविक है कि जो हमारी सीमा रेखा पर रहने वाली आबादी है वो हमसे जुड़ी रह सके, उसकी निष्ठा हमारे प्रति बहुत ज्यादा हो, जो दूसरी सीमा के उस तरफ रहने वाले देश है, लोग हैं, इन्हें बरगला न सके, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम उन पर विशेष ध्यान दें, उनके आर्थिक विकास पर, उनकी सुरक्षा पर हमारा विशेष जोर होना चाहिए, और इससे हमारी थोड़ी सी जो आंतरिक सुरक्षा है या सीमा की सुरक्षा है वो इंश्योर हो जाती है। तो ये एक पॉइंट आपको सुरक्षा के लिए मिल गया। दोस्तों एक खबर जो रेडियो न्यूज में नहीं है, अखबारों में भी नहीं है, लेकिन दूरदर्शन पर थी, वो थी हाई पावर एग्रीकल्चर कमेटी बनाई जाने की। एक हाई पावर एग्रीकल्चर कमेटी बनाई गई है। हाई पावर का मतलब क्या होता है? हाई पावर का मतलब है अगर आप पावर की दृष्टि से देखें तो हाईएस्ट लेवल पर तो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अगर कोई कमेटी बन रही है तो हाई पावर कमेटी होगी। दूसरे नंबर पर फिर क्या आता है कि अगर उसमें हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, यानी जो हमारे टॉप लेवल के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, अगर उस कमेटी में है तो उसे हम कहेंगे हाई पावर कमेटी। हाई पावर कमेटी का मतलब है कि ये जो भी बात बताएगी, जो भी कहेगी, उसको इंपॉर्टेंस दी जाएगी, ऐसा नहीं कि अपना उड़ा दिया ऐसे ही, इसलिए इसको कहा गया हाई पावर कमेटी। तो एग्रीकल्चर के लिए हाई पावर कमेटी बनाई गई है, और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसे कहा गया है कि वो 2 महीने में अपनी रिपोर्ट दे, और ये रिपोर्ट में ये बताएगी कि कैसे हम अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों ये एक सूचना भर है, इंतजार कीजिए, जैसे ही इस कमेटी की रिपोर्ट आएगी डेफिनेटली इसकी रिपोर्ट में जो बातें होंगी वो हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगी। फ्रेंड्स, कृषि से ही जुड़ा आज मैं एक करंट कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, जो बकायदे अरविंद पनगड़िया जी का लिखा हुआ है, टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित हुआ था। अरविंद पनगड़िया जी के बारे में जानते हैं, वो हमारे नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष रहे हैं और इंडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं, बेसिकली प्रोफेसर हैं, अब वो नहीं है, अब तो वापस चले गए कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए। इन्होंने कृषि उत्पादकता के बारे में एक बात लिखी, आप इस पूरे आर्टिकल को पढ़ेंगे, और उसके निष्कर्ष में उन्होंने ये बताया है कि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि कृषि क्षेत्र में जो लोग जुड़े हुए हैं बहुत जरूरी है कि हम उन्हें उद्योग या सेवा क्षेत्र में शिफ्ट करें, ये उनका निष्कर्ष है। ये निष्कर्ष उन्होंने किस तरीके से निकाला है यह आर्टिकल आपको बताएगा, और कभी कभी यूपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन पूछ भी लिए जाते हैं, तो आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे। मित्रों, जल शक्ति पर मैंने जैसा कि बताया कि मैं आपको डॉक्टर भरत झुनझुनवाला जी का एक लेख प्रोवाइड कर रहा हूं, इसमें उन्होंने 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं कि कैसे हम जल संरक्षण कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से और नए पॉइंट दिए हैं। सामान्य तो मैंने अभी आपको 5 पॉइंट बताए जो अभी खासकर जल शक्ति अभियान के तहत किए जाएंगे, लेकिन इन्होंने बिल्कुल नए पॉइंट दिए हैं। मैं चाहूंगा कि आप उन्हें लिखें, नोट कर लें, दोहराते भी रहें, अपने उत्तर में इनका प्रयोग करें, लेकिन इस आर्टिकल में आंकड़ों का बहुत प्रयोग किया गया है, उन आंकड़ों से आपको बचना है, उन आंकड़ों का आपके लिए कोई ज्यादा महत्व नहीं है। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, वो है नशीले पदार्थों का व्यापार और सुरक्षा। आपने एक खबर पढ़ी, न्यूज में सुनी भी होगी कि किस तरीके से जो अटारी है हमारा पंजाब और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, वहां 532 किलो हेरोइन पकड़ी गई, 532 किलो हीरोइन। इससे संबंधित मैं आपको एक एडिटोरियल कमेंट भी प्रोवाइड कर रहा हूं जो नव दुनिया ने दिया है। इसमें उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से बातें कही हैं, इसे आप पढ़ लेंगे, क्योंकि वक्त इतना नहीं है कि मैं इसे डिटेल में आपको बताऊं। ये आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, या इस तरह की घटनाएं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं इसके बारे में दो बातें आपसे कहना चाहूंगा। पहला यह है कि जब भी आप सिविल सर्विस की तैयारी करें तो प्लीज सिविल सर्विस का जो सिलेबस है उससे आप लगातार जुड़े रहें, बीच बीच में आप देखते रहें। जब आप सिलेबस को देखेंगे तो आपको बकायदे उसमें मिलेगा कि किस तरीके से हमारी आंतरिक सुरक्षा को जो एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है वो थ्रेट देता है, लगातार चुनौती देता रहता है, और किस तरीके से बकायदे एक नेटवर्क बना हुआ है अपराधियों का, उससे हमारी सुरक्षा व्यवस्था लगातार चुनौती महसूस करती है। ये बकायदे आपके सिलेबस में दिया हुआ है। चलिए, ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात है कि क्या ये टॉपिक या ये एडिटोरियल आपके काम का है, इसको आप कैसे जानेंगे? इसको जानने के लिए आपके पास एक ही उपाय है कि आप अनसॉल्व्ड पेपर देखें। अब मैं आपको 2017 और 2018 के दो क्वेश्चन बता रहा हूं, एक एक क्वेश्चन, अब आप इन्हें सुनिए, फिर आप इस एडिटोरियल कमेंट को पढ़िएगा और फिर सोचिएगा कि क्या यह एडिटोरियल कमेंट, जो बहुत ही छोटा सा है लेकिन बड़े प्यारे तरीके से लिखा गया है, आपकी मदद कर सकता है, इन दो क्वेश्चंस में आपकी मदद कर सकता है, आप सोचिएगा। यह मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप इसे मेरी तरफ से दिया गया होमवर्क ही समझ लें। 2017 में एक प्रश्न पूछा गया है कि आतंकवाद की महाविपत्ति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती है। देखिए स्टेटमेंट है, राइट? इस बढ़ते हुए संकट का नियंत्रण करने के लिए आप क्या क्या हल सुझाते हैं, राइट? अब आप हल बताइए। आतंकी निधियन के प्रमुख स्रोत क्या हैं? मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूं। द स्कोरेज ऑफ टेररिज्म इज ए ग्रेव चैलेंज टू नेशनल सिक्योरिटी। व्हाट सॉल्यूशन डू यू सजेस्ट टू कर्व दिस ग्रोइंग मिनस? व्हाट आर द मेजर सोर्स ऑफ टेररिस्ट फंडिंग? इसमें आपको टेररिस्ट फंडिंग के बारे में सोच करके देखिएगा कि क्या कुछ मिल रहा है, क्या इसमें एक स्रोत है, वो आपको एक पॉइंट मिल जाएगा। इसके बाद 2018 में देखिए कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है। संसार के दो सबसे बड़े अवैध अफीम उगाने वाले राज्यों से, यहां जो राज्य कह रहा है उसका मतलब है राष्ट्र, है ना? संसार के दो सबसे बड़े अवैध अफीम उगाने वाले राज्यों से भारत की निकटता ने भारत की आंतरिक सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है, राइट? ये अफीम की बात कर रहा है। नशीली दवाओं के अवैध व्यापार, अब आप देखिए आ गया, नशीली दवाओं के अवैध व्यापार एवं बंदूक बेचने, गुपचुप धन विदेश भेजने और मानव तस्करी जैसी अवैध गतिविधियों के बीच की कड़ियों को स्पष्ट कीजिए। इन गतिविधियों को रोकने के लिए क्या क्या प्रतिरोधी उपाय किए जाने चाहिए? India's proximity to two of the world's biggest illicit opium growing states has enhanced her internal security concern. Explain the linkage between drug trafficking and other illicit activities such as gun running, money laundering and human trafficking. What countermeasures should be taken to prevent the same? 250 शब्दों में लिखना है। मित्रों, मैं इसके बारे में अभी अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहा हूं, मैंने केवल आपको एक तरीका बताया है और मैं चाहूंगा कि आप इस एडिटोरियल कमेंट को पढ़ने के बाद जज करें कि ये जो दो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर देने में ये छोटा सा एडिटोरियल कमेंट आपकी कितनी मदद कर सकता है, और इसके बाद यदि मुझे बताएंगे भी तो मुझे अतिरिक्त खुशी होगी। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से तीन मित्रों के नाम हैं, मानस झा दिल्ली से, अजय अहिरवार गंज बसौदा मध्य प्रदेश से, और नीतीश नारनौल हरियाणा से। आप सबका बहुत बहुत आभार, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।